का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से समझा, अब तू से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम,
ओम शांति। प्यार की सागर की महिमा संसार ने भी कितना की है, क्योंकि हर आत्मा प्यार की प्यासी होती है, प्यार की भूखी होती है। यहां तक भी कहा जाता है कि भगवान भी प्रेम का भूखा है। संसार में चारों ओर प्यार का ही अभाव है, कमी है। दिन प्रतिदिन प्यार संसार में नए नए रूप लेता जा रहा है, अनेक प्रकार की विकृतियां बढ़ती जा रही हैं, प्रेम की परिभाषाएं बदलती जा रही हैं, लेकिन सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार, निश्चल प्यार, निर्मल प्यार, वो एक भगवान ही देता है। जन्म जन्मांतर से हम सभी ढूंढ रहे थे, सच्चे प्रेम की तलाश में थे, राह भूल गए थे, जो गीत भी सुना, अभी आकर उसने नई दिशा दी है मन को। आत्मा रूपी पंछी घायल हो गया था, मिलने को बेकरार था, इसलिए कहा गया कि एक बूंद के प्यासे, तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे। तो जब ये हमारे जीवन में परमात्म प्यार की बूंद हमने ग्रहण की, जिसको कहा जाए परमात्म ज्ञान, जो प्यार जो है वो ज्ञान के रूप में मिला, तो कैसे एक अलौकिक जादू हो गया हम सबके जीवन में। जीवन को परिवर्तन करना, जीवन में अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे ब्राह्मणों के जीवन में नई ऊर्जा आ गई। सांसारिक दृष्टिकोण से भले उस प्यार को कई प्रकार की संज्ञाएं दी गई कि ब्रह्मा कुमारी में जाने से क्या क्या होता है, लेकिन हम ब्राह्मणों ने प्यार का जो सच्चा सुख अनुभव किया है उस सुख के आधार पर जीवन में महान परिवर्तन हुआ है। जैसे परमात्म प्यार का जादू छा गया हम सबके ऊपर, कहा जाता है प्यार अंधा होता है संसार में, ऐसे कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि संसार का जो प्यार है बहुत विकृत हो गया, वो अनेक प्रकार की उसमें अशुद्धियां हैं, विसंगतियां हैं, या समाज को कुल को कलंकित करने वाली भी कई प्रकार की मर्यादाओं को भंग कर देते हैं वो। ऐसे संसार में प्रेम के भी कई किस्से हुए हैं। यहां भी बाबा हमको कहते हो तुम सब मेरे आशिक हो, मैं ही केवल एक माशूक हूं। ऐसे संसार में आशिक माशूक की कहानियां भी प्रचलित हुई हैं। लेकिन बाबा ने हमारे जीवन में जैसे प्रवेश किया जो एक सच्चा माशूक है, तो हमारे जीवन में कई प्रकार की क्रांतियां घटित हो गई। जो कभी चित्त में भी नहीं था, मन में भी नहीं था कि कैसे ये जीवन परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम अपने यज्ञ इतिहास को देखें तो बाबा ने सबसे पहले बच्चों को अडॉप्ट किया, छोटे छोटे बच्चों को। बड़े तो बाद में आए मां बाप उनके, वो तो उनको छुड़ाने के लिए आए थे लेकिन खुद ही उस चक्कर में आ गए। कई हम कहानियां सुनते हैं यज्ञ इतिहास की कि जो बच्चे इतने बड़े घराने के थे, रायल कुल के थे, बड़े साहूकार थे, धनी थे, धनाढ्य परिवारों से संपन्न थे, वो अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं थी, उन बच्चों के आगे पीछे कई नौकर घूमते थे, लेकिन उन्होंने सब परमात्म प्यार की जब क्रांति घटित हुई तो क्या हुआ, एक धक से सब छोड़ दिया। तो वो परमात्म प्यार का जादू कितना बड़ा महान परिवर्तन कर गया, और उसमें वो इस संसार की जनसंख्या हिसाब से एक मुट्ठी पर भी बच्चे नहीं थे। जिनके मन में संसार को परिवर्तन करने का एक बीज रूप आ गया, और वो बच्चे जो बड़े नाजों से पलते थे उनके जीवन में त्याग तपस्या इतना भर दिया कि उनको त्याग तपस्या के बिना कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। नहीं तो जो संसार के चकाचौंध के जकड़ में हों, शिकंजे में हों, और उनको त्याग तपस्या करना कितना बड़ा एक क्रांति है, कितनी बड़ी। कई बार सुनते हैं कि बाबा ने बहुत बच्चों से बहुत छोटे छोटे काम भी करवाए, कोमल हाथ, और बोला आपको जूती सिलाई करनी है टायर की रबड़ से, हाँ जी गाड़ी रिपेयरिंग करनी है। कई बार सुनते हैं प्रसंगों में कि बाबा ने गुलजार दादी को कहा, छोटे से थे उस समय, कि आपको जूती सिलाई करनी है, तो दादी ने बोला, दादी माना उस समय तो छोटे बच्चे, मैं जूती सिलाई करूंगी, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं और इतना बड़ा सुआ पकड़ा दिया मुझे, ये तो मेरे हाथों में चला जाएगा। तो बाबा ने बड़े प्यार से दादी के हाथ को पकड़ा, बोला बच्ची मैं इस हाथ में ना बहुत लाइट भर दिया, अभी तुमको कुछ नहीं होगा, सुआ कुछ नहीं करेगा तेरा, तुम जिधर मर्जी से सुआ चला। बस इतना कहने से एक अलग सी शक्ति आ गई उनमें, इतना प्यार से बाबा ने उनको पाला पोसा, हर चीज को ग्रहण करना उनके लिए बहुत सहज हो गया। जैसे तो बड़ी खुशी हुई, जूती सिलाई कर दी, ये बाबा ने कहा है कुछ नहीं होगा तुमको, सिलाई कर डाली सारी। गाड़ियां रिपेयर करना सिखा दी, गाड़ियां चलाना सिखा दी, बड़ी बड़ी बसें, जो कुंज दादी और भी कई दादियां, निर्मल शांता दादी जी सब गाड़ियां चलाते थे फटाफट। तो परमात्म प्यार के पीछे पीछे क्या सिखा दिया बाबा ने उनको, रात को पहरा करना अकेले, नहीं तो महिलाओं को तो संसार में कई दर्जे दिए गए हैं नीचा दिखाने के लिए, लेकिन बाबा ने कैसे प्यार का जादू, प्यार की छड़ी ऐसी फेरी कि हम सबके अंदर जो एक हीन भावनाओं के विचार थे अपने प्रति कि हम कुछ नहीं कर सकते या हमारे में कोई विशेषताएं नहीं है, योग्यताएं नहीं है, हम कैसे इतने ऊंचे ज्ञान को समझेंगे या इतने संसार को परिवर्तन करेंगे, लेकिन बाबा ने प्यार से ही इतने बड़े टाइम के एक सफर को कैसे सुहाना कर दिया। कब से यज्ञ स्थापन हुआ और आज भी किस गति से यज्ञ आगे बढ़ रहा है, कितने प्रकार के विघ्न आए इस यज्ञ में, लेकिन उन विघ्नों को कैसे पार कर लिया सबने परमात्म प्यार से। इसलिए कहते प्यार अंधा होता है, अर्थात संसार कुछ भी करता रहे लेकिन जब परमात्म प्यार का जादू छा जाता है तो उसके आगे छोटे मोटे माया के तूफान तो जैसे बाबा कहते कागज का शेर है, कुछ भी नहीं है। तो जब हमें स्मृतियां रहती हैं तो हम सब अपने आप को समर्थ अनुभव करते हैं, अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा का निर्माण होता है, एक नए उमंग उत्साह जन्म लेता है, जीवन में आगे बढ़ने की एक ललक पैदा होती है। तो प्यार में बहुत ताकत है, बल है, शक्ति है, जो हम आत्माओं को स्ट्रांग बनाता है, ताकत देता है। नहीं तो इतना बड़ा सफर तय करना, एक तरफ पूरा संसार है और एक तरफ मुट्ठी भर हम सब आत्माएं हैं, कितने बड़ी चैलेंज है। इतने नौजवान संसार के जो चकाचौंध में फंसे हुए हैं, उन नौजवानों को निकाल के पवित्रता से सींच देना, पवित्रता का बल भर देना, जीवन में पवित्र बना देना, मौत में यहां जो यज्ञ में समर्पित हो गए, कितनी बड़ी बात है। आज यज्ञ में कितने ऐसे युवा हैं, बहने हैं, भाई हैं, जिनकी विशेषताएं बहुत हैं, जो संसार की दृष्टिकोण से उनमें बहुत सारे विशेषताएं हैं, बहुत डिग्री हासिल की हुई है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे वो, एक धक से उनके इस प्यार के आगे जैसे पढ़ाई तो जीरो होगी एकदम। हाँ, आज हम देखते हैं हमारे एक सिक्योरिटी में भाई हैं, नेवी में थे, ऊंच पोस्ट पर थे, और ऊंच पोस्ट पर थे तो एक धक से उन्होंने जैसे ज्ञान मिला तो कैसे समर्पित हो गए। और यहां भी हो, एक दफा यहां उपखंड अधिकारी एसडीएम के ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन कराने के लिए गए, तो जैसे एसडीएम ने देखा इनकी डिग्रियों को देखा तो एसडीएम खुद खड़ा हो गया, आप कितनी डिग्रियां और आप समर्पित हो गए। यहां पैरे पर हैं रामविलास भाई, जो रात्रि पैरा करते हैं, जो पूरी रात जागती ज्योत की तरह रहते हैं, तो इतनी डिग्रियां हैं, लेकिन हमको पता चलता है उनका, एकदम सिंपल है, बाबा के प्यार में क्या क्या अर्पित कर दिया उन्होंने। तो वो ऐसी आत्माएं हैं, उनके आचरण को हम देखते हैं, लगता है कोई पहचान सकते हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट पर थे वो। ऐसे इस यज्ञ में महान विभूतियां हैं जिन्होंने परमात्म प्यार के पीछे संसार को एक धक से छोड़ दिया। धन दौलत का कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस ज्ञान धन के आगे वो धन जैसे धूल समान हो गया। तो प्यार में कितना बड़ा जादू है। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे प्यार के सागर हो, प्यार के सागर के बच्चे हो। तो उसकी एक बूंद ने हमारे जीवन में कितना बड़ा जादू कर दिया। बाबा ने कई दफा मुरली में कहा है, मैं तुमको ज्ञान की एक ही बूंद देता हूं। उस एक बूंद से क्या क्या हो गया हमारे जीवन में, कितनी बड़ी घटनाएं घट गई, हमारे जीवन की अशुद्धियां खत्म हो गई सारी। मन कितने प्रकार की अशुद्धियों से भरा हुआ था, अनेक प्रकार की अशुद्धियों के जंजाल में जी रहे थे हम सभी। कितना मन दुखी हो गया था, कुपित हो गया था, मन में कितनी कुटिलता आ गई थी। लेकिन बाबा ने कैसे बना दिया, सबके प्रति कैसी सोच बना दी, हमारी थिंकिंग ही बदल गई टोटल, हमारे बोल में कितना सामर्थ्य भर दिया। अगर हम सभी अपने अपने जीवन को व्यक्तिगत रूप से देखें तो अभी के जो हमारे बोल हैं वो पहले के बोल में कितना फर्क पड़ गया। पहले हमारे बोल से क्या क्या निकलता रहता था, लेकिन जो अभी परिवर्तन हम सभी अपने जीवन में देखते हैं ये किसके कमाल है, उस परमात्म प्यार के कमाल है। उस परमात्म प्यार की कृपा हुई है, वो कृपा सिंधु है, सागर है, दया का सागर है। तो हमारे ऊपर कितने उपकार किए उसने। इसलिए बाबा कहते हैं संसार के जो गीत है बजाओ खूब उनको, सुनो वो है भक्ति मार के। कभी अगर मन उदास होता तो बाजा बजा लो। तो भक्ति के गीत हम कई दफा देखते हैं ज्ञान से भी अच्छे लगते हैं। अब ये कितना सुंदर गीत है, तुम प्यार का सागर है, टच करा के बनाए भगवान ने, भक्ति के गीत टच करवा के बनाए हैं हमारे लिए। पहले से जैसे प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, एक मंच तैयार हो रहा है 100 साल पहले, जैसे लास्ट मुरली में कहा बाबा ने। हाँ, लिखने वाले संसार में ऐसे प्यार के गीत या कोई भी गीत भक्ति जो लिखने में इतने मगन हो जाते थे कि अपने शरीर के भी शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे, कुछ भी हो रहा शरीर को उनको। लेकिन क्योंकि परमात्म टचिंग थी, उसके आधार पर साइंटिस्टों को जितने भी हम अनुसंधानकर्ताओं को देखे संसार में, तो अपने देह की शुद्ध को भूल जाते थे, टाइम से परे चले जाते थे। क्या हो रहा है बाजू में, खाना पड़ा है, खाया है नहीं खाया है, इन सब से परे चले जाते थे। हम भी अगर हम सभी देखें, जिस दिन हमारा योग की अवस्था बहुत अच्छी होती है तो खाने को मन करता नहीं है इतना, उस दिन भूख भी बहुत कम हो जाती है। योग से उतरे तो बोलने में मन करता है कभी, वो वास्तव में हमारे योग का एक पैमाना है। अगर हम योग के बाद भी बोलना चलना चालू कर देते हैं तो उस पता पड़ जाता है कि आज हमारी अवस्था अच्छी नहीं थी। तो इसलिए बाबा के प्यार में कितना बड़ा जादू है, कितनी बड़ी कमाल है। उस जादुई प्यार की बूंद ने हमारे जीवन को कितना परिवर्तन कर दिया, कितना महान बना दिया। कैसे अंदर में कितने प्रकार के आपराधिक विचार थे। संसार में कहा जाता है ज्यों ज्यों दवाई की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। संसार में जितने भी अपराधों पर लगाम कसने के लिए अगर हम पिछले कई सालों के इतिहास को देखें, 1000 साल के इतिहास को देखें, तो अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए कई प्रकार की जेलें बनाई गई, कई प्रकार के कानून दंड विधान बनाए गए। लेकिन जैसे जैसे वो जितना बनाए गए उतना अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। लेकिन बाबा ने आके हम सबको हमारे अंदर के, बाबा ने जो विधान तैयार किए हमारे जीवन के अंदर में, कितने प्रकार के जो पहले विकार थे, आपराधिक वृत्तियां थी, आपराधिक सोच थी, सब खत्म हो गई। आज यज्ञ में ऐसे कई आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया था पहले, कितने जबरदस्त अनुभव है उनके, लेकिन परमात्म प्यार के पीछे न्योछावर कर दिया सब कुछ, एकदम स्वाहा हो गए। हाँ, देखते हैं जो पहले डाकू पंचम सिंह आज राजयोगी पंचम सिंह है, कितनी बड़ी हमारे सामने की उदाहरण है, एग्जाम्पल है, कितना बड़ा उनके बेटी भी सरेंडर है। तो बाबा ने कितना बड़ी हमारे जीवन में क्रांतियां घटित कर दी, कभी सोचा नहीं था। गीता ना, एक दिन भगवान मिल जाएगा और क्या क्या कर देगा, गुप्त रूप में, माउंट आबू में हम यहाँ आ जाएंगे, कभी सोचा नहीं था। कितने स्टेट से, सब अलग अलग स्टेट से बैठे हुए हैं जी, नाम नहीं सुना था। तो कहां से कहां पहुंच गए, ये किसकी कमाल है? भगवान की प्यार की कमाल है, उसका जादू है। उसके बताया ना, कानों में कहा तो उसके मंत्र हमारे कानों में, उसने मंत्र फूंक दिया और जैसे उस मंत्र से हमारे अंदर एक परमात्म शक्ति प्रवेश कर गई और हमने संसार से भी फिर लोहा ले लिया, ना केवल अपने परिवार से, लौकिक परिवार से, लेकिन संसार से लोहा ले लिया, समाज से लोहा ले लिया। हाँ जी, बगावत हो गई एक साल से, अलौकिक बगावत, विद्रोह हो गया एक क्रांतिकारी। हाँ, तो कितना बड़ा बदलाव आ गया, एक कितनी बड़ी क्रांति घटित हो गई। ये प्यार, हाँ, फिर इस प्यार ने हम सबके जीवन में क्या कर दिया, जैसे एक मुरली की शुरुआत ही है, आवाज से, आवाज की दुनिया से परे रहने वाला बाप आवाज की दुनिया में आकर आवाज में रहने वाले बच्चों को आवाज से परे ले जाते हैं आवाज के द्वारा। तो परमात्मा प्यार की आवाज का भी जादू कितना है, परमात्मा की आवाज जो है हमको आवाज से परे ले जाती है, अशरीरी बनाती है, देह की शुद्ध बुद्ध को भूल जाते हैं। कितने बड़ी ये एक जीवन में बदलाव की भूमिका है प्यार की। और क्या करती है, डिटैच कर देती शरीर से, और इस प्यार में सब प्रकार के डर खत्म हो जाते हैं। जिंदगी में कितने प्रकार के डर थे, क्या क्या सुनते थे संसार में, इतने बड़े शास्त्र गरुड़ पुराण तैयार कर दिए, अगर आप ये करेंगे तो ये जानवर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, गधा बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, पकौड़े, आपको पकौड़ों की तरह तला जाएगा तेल में, वो सब प्रकार के डर खत्म होंगे। तो कभी कभी हंसी आती है, और संसार आज भी उसी चीज में फंसा हुआ है। तो कितना डर बिठा दिया था, तो इतना डर बिठा दिया कि उनके शास्त्रों को नई पीढ़ी पढ़ती नहीं है। लेकिन वो भी एक पाप को रोकने के लिए दिन भी शास्त्रवादियों ने मनाए, कुछ हद तक उनके डर से भी रुका, लेकिन बाबा ने हमारे जीवन से सारा डर खत्म कर दिया है। भगवान से जैसे संसार में दूरियां थी, डर था भगवान आएगा पता नहीं क्या क्या कर देगा, लेकिन बाबा ने हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी कमजोरी को नहीं देखा। आते कितना प्यार से हमको गले लगा दिया। अभी भी हम कई दफा बाबा से, जैसे स्टेज के सामने बड़े लोग मिल रहे हैं तो नीचे बैठे हैं हजारों की तादाद में भाई बहने बैठे होते थे, लेकिन बाबा का जो दृष्टिकोण है वो सबके प्रति बहुत ऊंचा है। मान लीजिए हमारे से कोई भूल होती है और बाबा हमसे स्टेज पर मिल रहे हैं, और एक है जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करा है, लेकिन दोनों में मिलने से बाबा की कोई अलग अलग उसमें भेदभाव नहीं, पक्षपात नहीं। हमारे दृष्टिकोण से हो सकता है कि ये जो स्टेज पर व्यक्ति मिल रहा है इसमें तो बहुत सारी विसंगति है, ये तो पुरुषार्थ जरा भी नहीं करता है, लेकिन हमने देखा बाबा उसको भी, हमारे दृष्टिकोण में वो था लेकिन बाबा ने सबको गले लगाया, गले लगाते हुए देखा है। तो वो दृष्टिकोण हमारे में बाबा पैदा कर रहा है, पक्षपात की भावनाएं, भेदभाव की भावनाएं खत्म होगी सब, जो वास्तव में वसुदेव कुटुंबकम की सबके प्रति, कोई कैसा भी है, संभाव। ये नहीं देखा कि ये तो इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, ये तो बदलते ही नहीं है, इनके जीवन में इतनी विसंगतियां हैं, कमजोरियां हैं, कमियां हैं, श्रीमत पर चल नहीं रहे, लेकिन बाबा ने उनको भी कैसे आगे रखा। क्योंकि एक तो हमारा दृष्टिकोण हो सकता है कि हम उनको सही तरीके से, हमारा दृष्टिकोण बदला ही नहीं देखने का, दूसरी बात अगर उनमें कमियां हैं भी तो जिसमें वो आए यज्ञ में उसमें उनकी जरूरत थी, उनके खाते में बहुत ज्यादा जमा है, इतना जमा है कि हम सोच भी नहीं सकते, इसलिए वो तो एक सेकंड में जंप देके चले जाएंगे। आज के वरदान में है जो सवेरे ड्रिल भी अमृत वेले बजी, मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करने की विधि वो आत्मा में है। हम देखते हैं जरूरत पर काम आएगा वो, हम देखते हैं एक दृष्टिकोण से, लेकिन वो आत्माएं दूरांदेशी है। हमने कई बार अनुभव किया है, कई दफा लगता है कि सामने वाले जो निमित्त हैं, लग रहा है ये गलत है, और उसमें गलत लगता है उस समय, लेकिन उनकी जो दूरगामी दृष्टि है वो सचमुच वही सही होती है। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि संगम पर अकल्याण हो ही नहीं सकता है। ये तो हमारा एटीट्यूड है, हमारा एक संकुचित दृष्टिकोण है जो हम उस तरीके से देखते हैं। लेकिन हाँ, उसका दोषी वो निमित्त अगर है तो बाबा ने कहा बाबा संभाल देगा उसको, बाबा ने निमित्त बनाया, तुम्हारे पर नहीं चढ़ेगा। तो ये है कि बाबा ने जो हमको परमात्म प्यार के इसमें बांधा है, तो इस प्यार को रिसीव करने के लिए बहुत सूक्ष्म महीन पुरुषार्थ चाहिए। इसमें बहुत साइलेंस साधने की जरूरत है, बहुत चुप्पी साधने की जरूरत है। इसे कहा जाता है एक चुप साओ सुख। जैसे मान लीजिए हम जितने भी लोग बैठे हैं, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, सारा दिन मैं आपकी कमियों का चिंतन करता रहूं या आपकी विशेषताओं का चिंतन करता रहूं, और जो हमारे मन में भावनाएं होंगी उसी भावना के आधार पर हमारा फिर मिलन होता है, उसी के आधार पर हमारी जीवन में परिवर्तन होगा, और उसी के आधार पर हम सभी एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। फिर अगर मैं आपसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखता हूं, तो निश्चित तौर पर मुझे भी अपने मन की भावनाओं को भी अच्छा बनाना ही होगा। अगर आप व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं तो वो आपका दोष नहीं है, वो मेरा दोष है, क्योंकि मैं आपके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। भले सामने वाले में 100 कमी है, अगर मैं उसकी 100 कमियों का चिंतन करके फैला रहा हूं, प्रसार कर रहा हूं, तो कभी भी ये तो अपेक्षा रख ही नहीं सकता कि इनसे भी हमको अच्छा मिले। इसलिए कोई कैसा भी है, इसलिए बाबा ने कहा ना, सबसे बड़ा ना जो सर्टिफिकेट है परिवार से लेना है। बाबा ने कहा ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेगा, ना परिस्थितियां बदलेगी। क्या बदलना है? स्वयं को बदलना है। इसलिए अगर हम स्वयं अच्छे हैं तो जग अच्छा है। बाबा ने बताया ना उस दिन, एक एक आत्मा के पीछे पूरा संसार जुड़ा हुआ है। तुम यहां खुश हो तो संसार खुश है, तुम दुखी हो तो संसार दुखी है। इसलिए बाबा ने हम सबको इतने बड़े बड़े सोमान, इतनी बड़ी उपाधि दी है, सोमान से सजाई मूर्त बना दिया है। हां जी, मन जीते जग जीत। तो मन जीते क्या? मन के अंदर ऐसे ऐसे विचारों को भर देना है जो हमारी यात्रा सुगम हो जाए। जीत के लिए हमको दौड़ ना लगानी पड़ेगी, बल्कि जीत हमारे पास आए। अर्थात जो बाबा कहते हैं, सफलता तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमको जीत के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, परछाई की तरह पीछे आएगी सफलता। कहते हैं सफलता परछाई की तरह उसके पीछे आती है। तो कैसे? वो तो वास्तव में हमारे विचारों के ऊपर ही डिपेंड करता है, हमारे विचार कैसे, हमारा दृष्टिकोण कैसा सबके प्रति। तो कैसे बाबा ने जीवन से डर खत्म कर दिया, एक नए विचारों को बाबा ने हमारे मन के अंदर भर दिया। अगर अभी भी हम एक दूसरे के प्रति थोड़ा ऊंचा नीचे सोचते हैं, तो भी हमारे अंदर डर बना रहेगा कि वो फलाना मेरे पति पता नहीं क्या कह दे। और जीवन में तो होगा ही होगा, कर ही नहीं सकता है। हाँ, जो इस संसार के देदारियों के चिंतन में रहेगा, वो परमात्म चिंतन कैसे करेगा? और धीरे धीरे फिर वो संस्कार बन जाते हैं। लेकिन हम सबका बहुत बड़ा दायित्व जिम्मेवारी है। जैसे उस दिन भी क्लास में कहा, तो हमने देखा जब हम ये सोचते हैं कि मैं एक जिम्मेवार आत्मा हूं, अगर हमको ये हमेशा स्मृति में रहता है हर समय, तो फिर हम चौकस रहते हैं, सतर्क रहते हैं, जागरूक रहते हैं। कहा जाता है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, नहीं तो अनेक प्रकार की गलतियां होती हैं। फिर अगर जिम्मेवार है तो आदमी की नींद फिट जाएगी। अगर हमारे जीवन में सुस्ती या अलबेलापन है, तो इसका अर्थ यह कि हम जिम्मेवारी को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी को निभा नहीं पा रहे हैं। तो कैसे बाबा ने एक हमारे अंदर एक नई एनर्जी भर दी है। इस ज्ञान में एनर्जी है, ताकत है, ज्ञान में प्यार समाया हुआ है। प्यार कोई अलग से ऐसा नहीं है कि हमको केवल योग में बैठे हम लवलीन हो जाए बैठ के तुरंत, वो नहीं होगा। हर चीज में, चाहे वो हम सेवा में लगे हुए हैं, तो उसमें भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान का चिंतन चलता रहे, परमात्म उपकार जो हैं उनकी कुछ सोच चलती रहे। तो हर क्षेत्र में हम जैसे परमात्म एनर्जी का एहसास करते रहेंगे, वो हमारे साथ है। जैसे गुलजार दादी जी की अधिकतर क्लासों में हमेशा ये समझो कि बाबा मेरे साथ में ही है, वो मेरा साथी है ना। कोई होता बॉडीगार्ड साथ में होता है, भले मालिक कमजोर है लेकिन बॉडीगार्ड साथ में है तो उसको वो निश्चिंत होता है बिल्कुल, उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं होता है। तो बाबा भी हमारे साथ हमेशा छत्रछाया बनकर हमारे साथ हमारी सुरक्षा कर रहा है। जैसे उस दिन बताया ना मुरली में जो अलग अलग पॉइंट बताए थे, उसकी छत्रछाया की अनुभूति करना। हाँ, अपने को बॉडी समझो तो गार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे देह के आकर्षण से, देह के संबंधों से, देह के रिश्तों से बाबा ने हम सबको ऊपर उठा दिया। वास्तव में ज्ञान तो है ये देह से ऊपर ले जाने वाला, तो कैसे डिटैच कर दिया, डर खत्म कर दिया, एक नई एनर्जी भर दी। अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए जैसे बाबा ने हम सबको एक बिंदु दे दिया, फुल स्टॉप दे दिया, कोई भी बात होती नथिंग न्यू। जैसे उस दिन था ना मुरली में पंजाब की पार्टियों से मुलाकात, नथिंग न्यू हो रहा है किस लिए, परिपक्व बनाने के लिए। उस दिन था एक मुरली के वरदान में था नथिंग न्यू, और क्या क्या है इस ड्रामा को, नथिंग न्यू। अगर परिस्थिति आती है तो आगे बढ़ाने के लिए, परिस्थिति आती है तो मायाजित बनाने के लिए, परिस्थिति आती है तो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, चार बातें थी वो। तो हर चीज हमारा सोचने का तरीका बाबा ने बदल दिया। जीवन में कोई भी परिस्थितियां घटित होती हैं तो उनसे भी हमको कैसे मजबूत बनना है उनके अंदर भी रहते हुए, वो बाबा ने सिखा दिया। तो उसके प्यार का जब जादू है, जैसे शिवलिंग के ऊपर एक एक बूंद टपती रहती है, ऐसे भी हमारे जीवन में निरंतर हर पल ज्ञान की बूंद कोई ना कोई टपती रहनी चाहिए। चाहे मंदिर चिंतन कर रहे हैं, चाहे किसी से चर्चा कर रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, चाहे आपस में चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान हमारे सुरक्षा कवच है, ये संजीवनी बूटी की तरह काम करता है, जो हमेशा हमको जागती ज्योत बना के रखता है। कैसे अंदर हमारे अंदर गुड विशेष भर दी, सबके प्रति शुभावना कामना। संडे की मुरली जो बीत गया बताया था ना, सबसे पहली बात सबके प्रति शुभावना शुभकामना, ये चेकिंग करनी है रोज सबके प्रति। कल के वरदान में था, कल या परसों, रावण से 10 गुना भी तेज हो गई फिर भी सहन करो, तो फिर भी हमको शुभ भावना कामना रखनी है। कितनी बड़ी भावना है, हम सब के अंदर एक शक्ति भर दी है, एनर्जी भर दी, ताकत भर दी है। हमारा कोई शत्रु रहा ही नहीं है, सारे मित्र बन गए संसार के, सबसे प्यार हो गया, सार्वजनिक प्यार है ये प्यार, पब्लिक में प्राइवेट प्यार था, एक मुरली भी चली है उसमें। तो बाबा ने हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला दिया है और हैप्पी लाइफ बना दी है हमारी, खुशनुमा खुशनसीबी की झलक स्लोगन था कुछ दिन पहले, किसके जीवन में होती खुशनसीबी की झलक, 3 दिन पहले स्लोगन था। जो अपने भाग्य हैं जी, जो अपने सुविधे भाग्य जीवन में कुछ नहीं बिगी झलक, जो अपने भाग्य को हमेशा स्मृति में रखते हैं, तो कैसे हमारे जीवन में एक नई खुशियां आ गई। ये खुशियां थी पहले, संसार में अल्पकाल की खुशियां हैं, साधनों के पीछे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे बिन कौड़ी बादशाह हो, कोई साधन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अविनाशी खुशी है जो हमारे रगों में बस गई है, कण कण में समा गई है परमात्म प्यार की खुशी। इस खुशी ने जैसे पंख लगा दिए, बताया ना गीत में, पंख हैं कोमल उड़ना है उस पार। तो हमारे जीवन में कौन कौन से पंख दे दिए बाबा ने, उमंग उत्साह के पंख दे दिए, ज्ञान योग के पंख, हिम्मत के पंख दे दिए, जिससे आत्मा हमेशा उड़ती रहती है और संसार में बिना पंख के छटपटाते रहते हैं। पंछी का अगर एक पंख टूट जाए क्या हाल होता है, इतना बड़ा बाज होता है जो बड़े बड़े भी चीजों को उठा के ले जाता है, लेकिन जब उसका पंख टूट जाता है तो क्या होता है, बेसहारा हो जाता है। उसी तरह से हम सबको बाबा ने पंख, ज्ञान योग के पंख दिए, इन पंखों को हमको मजबूत रखना है तो जीवन में सदा खुशी रहेगी। और फिर और क्या है कि इस प्यार ने हमारे जीवन में कैसा जादू चलाया कि मैंपन खत्म कर दिया, लेकिन मैंपन को क्या बना दिया, विशाल बना दिया, पूरा संसार ही अपना हो गया है। वो छोटा मोटा मैपन तो खत्म ही हो गया, एकदम फतेह हो गई उस पर, हद से बेहद मिला दिया। छोटा मोटा संसार नहीं रहा हमारा, बेहद का संसार हो गया, जागती ज्योत बना दिया निरंतर, तीसरा नेत्र दे दिया, और बहुत बड़ी क्रांति घटित होगी जीवन में। नहीं तो कितना विरोध होता था शुरू शुरू में, हम सबके जीवन में विरोध हुआ ही है, कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं होगा जिसके जीवन में कोई विरोध नहीं हुआ होगा, लेकिन उस विरोध को झेलने की क्षमता और खुशी खुशी पार, जितना जिसको रोका गया वो उतना आगे बढ़ा। आज ही हम सुबह यहां एक बहन जो भी आए हैं देख रहे थे उसको, माता जी हैं, कुछ साल पहले यहां भी आए थे, भट्ठी में उनको उनके साथ बच्ची आ गई थी, तो उनको यहां रोका कि भाई बच्ची को साथ नहीं लाना, भाई आपको भी यहां से नीचे शांति बन जाना पड़ेगा। तो माता जी फिर गई नहीं, इधर ही बैठ गई, बोले मैं इधर ही रहूंगी। तो जैसे उसको रोका, तो तब से हमने देखा तब से उसका आना जाना और ही ज्यादा हो गया, इधर लगन बढ़ गई। मैं देखता हूं हर दूसरे तीसरे महीने तो आ ही जाती हूं कैसे न कैसे। तो जिसको रोका जाता है वो उतना आगे बढ़ता है, अपने यज्ञ में भी कितने विघ्न आए, लेकिन दिन रात, दिन दुगनी रात चौगुनी कैसे यज्ञ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि परमात्म कर्तव्य है। तो परमात्म प्यार ऐसी आग लगाता है अंदर जो आने वाले सब विघ्नों को भस्म कर देता है, जला देता है। अंदर में जैसे आग लग जाती है, कुछ करने की ललक पैदा हो जाती है। तो परमात्म प्यार की अनेक खूबियां हैं, इसकी कई प्रकार का जादू भरा हुआ है। निस्वार्थ प्यार है, इसमें स्वार्थ नहीं है। हमारा जो संकुचित विचारधारा, वो इससे बाबा ने हम सबको ऊपर उठा दिया, मेरे तेरे से ऊपर कर दिया। अगर हम उसको ये भी पकड़ के बैठे हैं तो हमको सोचना चाहिए क्या हमने पाया फिर परमात्म प्यार को पाके। हम ये नहीं सोच सकते कि सभी मेरे अनुसार चलने चाहिए, सबका अपना अपना पार्ट है। अगर हमको हमेशा, हमने देखा है, हम हमेशा अगर ये भी याद रखें कि सबका अपना अपना पार्ट है, तो जीवन में बहुत तब भी खुशी रहती है। किसी को देख के, पार्ट को देख के प्रभावित नहीं होंगे, पता है हमको सामने वाला गलती कर रहा है, भाई पार्टी उसके ऐसा है, अगर हम उसको चेंज करें तो फिल्म ही सारी खराब हो जाएगी, उसका दोष हमारे पर भी लग जाएगा, तो कैसे हम करें। उसके पार्ट को खुशी से देखेंगे तो वो हमारे पार्ट को भी वैसे देखेगा, और जरूर हमारी शुभ भावना निश्चित तौर पर उसको बदलेगी जरूर। हाँ, वही संसार में ड्रामा में से तो ऐसे होता ना, मंच पर तो कुछ और होता है लेकिन पीछे कुछ और होता है। उसी तरह छोटी मोटी घटनाएं जीवन में तो दिखाई दे रही है, लेकिन पीछे तो हमारी जो बैकग्राउंड है तो कुछ और ही है ना। तो कैसे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, परमात्म प्यार भर गया हमारा, उसमें समा गए हम सभी। मोह पास में जो आत्मा बंदी थी, संसार में कितना मोह था, परिवारों में, बच्चों में, बिजनेस में, लेकिन बाबा ने मोह से क्या कर दिया था ना, उस धन प्रदान में पांच बातें परिवर्तन हो गई, काम को शुभ कामना में परिवर्तन कर दिया, क्रोध को रूहानी खुमारी में, लोभ को अनासक्त, और मोह को शुद्ध स्नेह में परिवर्तन, अहंकार को स्वाभिमान में बदल दिया। तो कैसे बदल दिया है, कितनी बड़ी घटनाएं घट गई हमारे जीवन में, परमात्म प्यार का जादू छा गया हम सब के ऊपर, प्योरिटी भर दी जीवन में, जो हमारे जीवन का फाउंडेशन है। इस प्योरिटी को ग्रहण करने में हम सबको कितना सहज हो गया है, जिसको संसार कितना मुश्किल समझता है, सारा संसार इम्प्योरिटी में डूबा हुआ है, लेकिन बाबा ने कैसे निकाल के हम सबको एकदम सहज बना दिया, मुश्किल को आसान कर दिया, जिसके लिए कि हमको मेहनत करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि समझ आ गई ना एक बार, जिस चीज की हमको समझ मिल गई तो उस पर चलना कौन सा मुश्किल है, फिर रास्ता पता चल गया, ये रास्ता सीधा जा रहा है, ये प्योरिटी का रास्ता सीधा स्वर्ग में पहुंचेगा, तो हमको मुश्किल ही नहीं है। और स्वर्ग माना यही जीवन को स्वर्ग बना दिया, प्योरिटी ही स्वर्ग है, प्योरिटी ही सतयुग है, वो ही जीवन मुक्ति है, तो कितना श्रेष्ठ बन दिया। हमारे जीवन में कितने सुंदर सुंदर शुभ भावनाओं के बीज अंकुरित कर दिए, स्वयं के प्रति, सबके प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, जानवरों के प्रति, जैसे बाबा जानवरों के बच्चे बच्चे कहता था, इसलिए जानवर यहां भी घूमते रहते हैं, हम सब ब्राह्मणों के आसपास सीता भालू सब घूमते रहते हैं। तो अनेक प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी घटी हैं, बाबा ने हम सबके अंदर एक्स्ट्रा फोर्स भर दिया, इतनी ताकत भर दी हम सबके अंदर कि हमको वो ताकत का एहसास रहना चाहिए। उस ताकत वो तो हमने उसको उसने हमारे जीवन में वो बीज बो दिया है, लेकिन उसको अंकुरित करने के लिए हमको निरंतर ज्ञान योग का जल उसको डालते रहना है, बार बार उसको स्मृति में लाते रहना है। तो इस परमात्म प्यार की एक बूंद ने क्या क्या कर दिया, अगर हम चिंतन करेंगे हम स्वयं के जीवन में, तो सच में बहुत एक सुखद एहसास होता है, फीलिंग होती है, आत्मा अपने आप उड़ने लगती है, संसारिक इच्छाओं से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बताया ना, देह के चिंतन में रहेंगे तो विदेही कैसे याद आएगा, देह के आकर्षणों में फंसे रहेंगे। इसलिए हमको अधिक से अधिक जितना भी हमको टाइम मिलता है, टाइम तो वास्तव में बहुत सारा होता है, चलते फिरते कितना टाइम मिल जाता है, जरूरी नहीं हमको विशेष कोई सेवा से निकल कर, नहीं, सेवा करते हुए तो कितना टाइम मिल जाता है, उस टाइम में भी हमको किसी ना किसी चिंतन में रहना है जरूर। जैसे आज ही बाबा ने बताया, मैं तुमको कांटों से फूल बनाने आया हूं, तुम्हारे जीवन में कितने प्रकार के कांटे थे, तुम्हारी कशिश होनी चाहिए एक बाप से, लव क्यों नहीं होता, क्योंकि आत्मा के ऊपर कट चढ़ी हुई, मैल चढ़ी हुई है। तो मैल कौन सी है, संसारिक विचारों की मैल है, पिछले जन्मों की मैल इतनी काम नहीं करेगी, वो तो खत्म होगी एक हिसाब से, लेकिन अभी जो ब्राह्मण जन्म लेने के बाद भी अगर हम उन विचारों को पकड़ के बैठे हैं, उन विचारों के बारे में ही ज्यादा सोच रहे हैं, समय दे रहे हैं, उनको ही पानी दे रहे हैं, तो विचार हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, वो हमको भगवान से दूर कर रहे हैं, हम फिर वो उन विचारों को पकड़े बेचारे बन जाते हैं। तो बेचारे नहीं बनना है, विचारवान बनना है। तो बाबा ने कितने प्रकार के हमारे जीवन में परिवर्तन कर दिए। एक तो ज्ञान ऐसा, अगर हम कोई भी टॉपिक हमको मिलता है तो चिंतन करते 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 स्वतः बाबा अपने आप काम करते हैं, हमने खुद देखा है। जब भी हमको टॉक मिलता है तैयारी तो करते हैं सभी, लेकिन एक है हम समर्पित होकर जब बैठ जाते हैं तो अंत में कुछ और ही होता है। वो यहां आके भी कई दफा भूल के जाते हैं, हम नर चाहत कुछ और, लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर है वो ही कराएगा, कर्ण करावन हार वो है, तो उसकी मदद मिलती है स्वतः। इसलिए कई दफा हाँ वो चिंतन करना भी जरूरी है, जो अगर हमको यहां भूल जाए ना कोई बात नहीं उसकी, क्योंकि उसने इस चिंतन के लिए भूमिका बनाई है, वो चिंतन ने भी हमारे विचारों को शुद्ध किया है। उतना समय हमने बाबा की याद से मन बुद्धि में भी नए विचारों को स्थान दिया है, तो बाबा तो ऊपर से देख रहा है ना, और उसी पल की तलाश रहती है बाबा को कि बच्चा कब चिंतन करे तो मैं इसको भी अभी ताकत भर दूं, और हमको भी उसी तलाश उसी मौके की तलाश में रहना है कि सचमुच भगवान, और हमेशा उसी मौके की तलाश में रहना है, इंतजार में रहना है, प्रतीक्षा में रहना है कि अब भगवान आकर मेरे जीवन में महान परिवर्तन करेगा। ये नहीं हमको सोचना कि बहुत महान परिवर्तन हो गया, अभी तो बहुत होना कुछ बाकी है, जो बाबा ने बोला आगे चलकर तो तुमको देखने से साक्षात्कार हो जाएगा चालू, आंखों से लाइट निकलेगी, मस्तक की मणि चमकती दिखाई देगी, है ना, जिसको हनुमान का साक्षात्कार होगा वो कहां हो रहा है अभी, उस मौके की तलाश में भी बहुत कुछ काम बाकी है। बाबा ने बताया ना उस दिन मुरली में, दुखियों पर रहम करो, आवाज सुनो, पुकार सुनो, उनकी आवाज सुनने नहीं आती, कहां सुनने में आ रही है, भले हमको पता है संसार में दुख बढ़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो आज इन कानों से सुनाई दी, वो स्वप्न में वे चिल्लाते हुए दिखाई दे भक्त लोग, वो कहां अभी तक भी, हाँ देखते तो हमें भक्त लोग जा रहे हैं, वो भले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक अंदर में हमारी रगों में समा जाए कि सचमुच वो आवाज आ रही है कि हमारी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, जिन जिम्मेवारियों के प्रति हमको सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, जो हमको निरंतर वो हमारी नींद को फिटा दें, वो अवस्था तो धीरे धीरे आएगी ना। तो ऐसे कौन सा संकल्प लेंगे, बाबा का, एक बाबा के संकल्प में समा जाएंगे, जब हम उसके निरंतर याद में रहेंगे तो संसार की आवाजें सुनाई देंगी, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी फिर उसके साथ मिलने लग पड़ेगी, क्योंकि बाबा ऊपर रहता है तो हमारी व्यवस्था जैसे उपराम होगी तो सब संसार हमको संसार की आवाजें सुनाई देंगी। तो ऐसे हमको ये परमात्म प्यार के जादू ने क्या से क्या बना दिया। ओम शांति। है मौत खड़ी उधर।
बाहर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी, कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से